நாராயண நாராயண யாவர் ராமச்சந்திர கீ ஜெய, மோர் முகுட்டவன் ஸ்ரீவாலே கீ ஜெய. ஜப் ஈஸ்வர் நே ஹம் லோகோ கோ புத்தி ஓர் விவேக் தியா ஹை, தோ அப்னா சமய ஜோ ஹை சோ உத்தம் சே உத்தம் பிதானா சாஹியே. ஈஸ்வர் நே ஹம் லோகோ கோ ஜோ சக்தி தி ஹை, விவேக் தியா ஹை, ஜோ ஜ்ஞான் தியா ஹை, ஜோ பல தியா ஹை, ஐஸ்வர் தியா ஹை, இஸ்கா உபயோக் டீக் கர்னா சாஹியே. ये सब हम लोगों को क्यों दिए हैं? आत्मा के उद्धार के लिए. और हम लोग इसका दुरुपयोग करें तो इसका फल जो है सो हमारे लिए खतरनाक है. समय का उपयोग भी ठीक करना चाहिए, एक क्षण भी फालतू काम के मां नहीं बिताने चाहिए. शरीर का कोई भरोसा नहीं है, नेमाल அச்சானக் மிருத்யு கப் ஆக பிராப்த ஹோ ஜாவே. யதி ஆஜ் ஹமாரி மிருத்யு பிராப்த ஹோ ஜாய தோ ஹம் யே நீ கஹ சக்தே கி ஆஜ் நீ சலேங்கே கல் சலேங்கே, அபி ஜானா ஹோகா. ஆர் ஹம்கோ யா ஹம் லோகோ கோ கிஸி கோ பதா பி நஹீ ஹை கி நமாரோ கப் ஜானா படே. ஓர் யஹாம் ஸே ரோனா ஹோனே கே பாத் அப்னே யஹாம் கோயி பி சம்பந்த இஸ் ஜீவ் கா நஹீ ரஹதா. तो हम रात और दिन इतने भागते दौड़ते रहते हैं और मरने का कोई ठिकाना नहीं. क्षण मात्र के मां चाहे जब भी प्राण निकल सकते हैं, फिर हमारा कौन और इस संसार के मां इस धन से और जन से इससे हमारा क्या प्रयोजन है? जबकि इस देह से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, तो धन और जन की बात तो दूर रही. तो हम लोग एक माया रूपी மது பான் கே உன்மந்த ஹோ ரே ஹே கி ஹம் லோகோ கோ அப்னா பூர்வா பரமேஸ்வர் நஹீ திக்தா. ஜெய்சே மதுரா பீனே வாலே கோ குச்சு நஹீ சூஜ்தா. ஹமாரா சாரா ஜோ சமய ஹை வோ பரமாத்மா கி பிராப்தி கே காம் மே ஹீ லக்னா சாஹியே. ஓர் ஹமாரி சாரி சேஷ்டா சாதன கே ரூப் மே பன் ஜாய், ஐசி சேஷ்டா கர்னி சாஹியே. शरीर की, मन की, वाणी की कोई भी हमारी क्रिया व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए और पापमय नहीं होनी चाहिए. किंतु सूक्ष्मता से विचार करके देखा जाता है तो हमारे शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, मन की क्रिया बहुत सी ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं. बहुत दफा हम लोग फालतू बातें करते हैं, बल्कि कभी कभी तो लोगों की निंदा करते हैं जो पापमय है, जिसका फल हमारे लिए पतन का हेतु होता है, यानी हमारे लिए फल बहुत ही खराब होता है. मन की क्रिया तो अधिकांश के बीच के वहां फालतू होती रहती है, जिससे कोई हमारा संबंध नहीं. इस प्रकार की फुरना होती रहती है, मन कहीं का कहीं चला जाता है, कलकत्ता बंबई कोई ठिकाना नहीं, और फालतू चिंतन करता है. हम लोगों को बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि अपना ऐसा
अमूल्य समय व्यर्थ का क्यों जाए.
भगवान ने गीता में बताया,
उद्धेत आत्मा आत्मा आनंद, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए आत्मा के द्वारा आत्मा का, न अवसादी और पतन नहीं करना चाहिए. अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन नहीं करना चाहिए. वही पुरुष महामूर्ख है जो खुद अपने आप का आप ही पतन करता है. अपने आप का आप ही पतन करना क्या कि जिस साधन को, जिस क्रिया को हम खराब समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं, ऐसा समझ करके भी हम उस काम को करते हैं, यही अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है. जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना आदि जो पाप कर्म है, और इसको हम बुरा समझते हैं,
और फिर भी करते हैं तो ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। हम खुद अपनी दृष्टि से गिर जाते हैं।
दूसरों की दृष्टि से तो गिरते ही हैं, किंतु हमारी आत्मा खुद कहती है कि ये बुरा काम है और फिर उसको हम करते हैं
तो हम अपनी दृष्टि से भी गिरे।
और भी हमारा समय हम समझ करके जो फालतू बिताते हैं, जैसे निद्रा है, आलस है, प्रमाद है,
ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है।
इसी प्रकार से थी
आसुरी संपदा के मध्य दुर्गुण बताए हैं, उन दुर्गुण का हम सेवन करते हैं तो वो भी हम अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करते हैं।
दुर्गुण क्या कि जैसे दम्भो दर्पो भी मानस क्रोधे पारुष देव चो अज्ञान चाप जात पार्थ संपद मासुरी।
दम जो पाखंड है और जो दर्प मान घमंड और अभिमान और क्रोध और कठोर वचन और अज्ञानता,
ये सब आसुरी संपदा है।
ऐसा समझ करके हम काम क्रोध लोमोह अहंकार राग द्वेष आदि जो दुर्गुण है अगर हमारे भीतर में उसका हम त्याग नहीं करते
तो ये उनको एक प्रोत्साहन करना है, पोषण करना है, यही मूर्खता है। तो विवेक और बुद्धि के द्वारा इन सब दुश्मनों को जो हम लोगों के हृदय में स्थित है एकदम निकाल देना चाहिए। और भगवान इसके माँ हमको पूरी मदद कर, भगवान न्यायकारी है, कोई भी उसके सामने दरखास्त करेगा तो भगवान कहेंगे ठीक है, ये इन शरीर इनका घर है तो इसे तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के मकान में कोई अपने हाथे जमा लेता है तो सरकार में नाश करने के बाद वो बहुत उसको हटना ही पड़ता है। तो इन सब को हटा करके अंतकरणों को शुद्ध बनाना चाहिए। और भी हमारे हृदय के बीच के वहां मल विक्षेप आवरणों का जो दोष है ये भी हमारे लिए खतरनाक है। मल विक्षेप आवरण क्या कि जैसे कोई एक तालाब है और उस तालाब का जल ऐसा मैला है और हवा से वो हिलता भी है और उसे के ऊपर कौमोदरी छाई हुई है तो समझना चाहिए कि तालाब की जू तो हम लोगों का हृदय है और उसके बीच के मां ये संसार जो है ये उसके मां जल भरा हुआ है और इस जल के मां जो मैलापना है ये मलदोष है। हृदय के मां जो मैला मान दुर्गुण दुराचारों का समूह ये मलदोष है। और जल का जो हिलना है तालाब के मां जैसे चित्त का जो विक्षेप है चित्त की जो चंचलता है ये सुविक्षेप दोष है। और अंतःकरण के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है ये सो आवरण दोष है। जैसे तालाब के जल के ऊपर कमोदिनी है तो वो कमोदिनी से तालाब जो सो ढका हुआ सा है और हवा से जल हिलता है और विषय भोग रूपी हवा है जो एक प्रकार से जल को हलाती रहती है। और दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह आश्रय संपदा का ये सो मलदोष है। जैसे तालाब के जल के मां मैलापना है तो मल विक्षेप आवरण इन तीनों दोषों के नाश के लिए मल दोष के नाश के लिए स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से कर्मों का करना और भगवान के नाम का जप करना तो भगवान के भजन से निष्काम कर्म से मल दोष का नाश हो जाता है। और भी जितने पुण्य कर्म है तीर्थ करना व्रत करना तप करना जग करना ये सब जितने जो कर्म ये सारे कर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान के नाम के जप करने से भी मल दोष का यानी सारे पापों का नाश हो जाता है। और विक्षेप के नाश के लिए भगवान का ध्यान सबसे बढ़कर के साधन, चित्त की जो चंचलता है इसको मिटाने के लिए भगवान का ध्यान है तो बहुत ही उत्तम चीज है। और जो अज्ञान का पर्दा है
जिसको आवरण का दोष कहते हैं, इस आवरण को हटाने के वास्ते सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन शास्त्रों का, इससे बुद्धि तेज होकर के सूक्ष्म होकर के और ये दोष जो सो मिट जाते। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। मार मुक्त वंशी वाले की जय। तो अपना जो समय है इसको काम में लेना चाहिए। ईश्वर ने जो हम लोगों को ये सब पदार्थ जो दिए हैं, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर और शरीर के मां बल, बुद्धि में विवेक ज्ञान और ये ईश्वर और कुटुंब आत्मा के उद्धार के लिए दिए हैं। इनका हम उपयोग ठीक करें तो इस आत्मा का उद्धार हो जाता है, और इसका हम उपयोग विपरीत करें, अनुचित इनका प्रयोग करें तो उसका फल नरक होता है। किसी भी विषय में आप विचार करके देखिए, मन बुद्धि इंद्रियों को जो संसार के सन्मुख रखें तो ये सब हमारे पतन के हेतु हैं, और भगवान के सन्मुख रखें तो भगवान के दर्शन होकर के आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो ये ख्याल करना चाहिए, संसार को सन्मुख रखना क्या कि हम आंखों से संसार को देख रहे हैं, कानों से संसार की बातों को सुन रहे हैं, वाणी से संसार की बात ही कह रहे हैं, हाथों से संसारी काम ही कर रहे हैं, मन से संसार का ही ध्यान कर रहे हैं, बुद्धि से संसार के विषय का निश्चय कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए महान पतन का हेतु है। और इसके विपरीत इन सब को हम भगवान के सन्मुख कर देवे और संसार को पीठ दे देवे। इंद्रिय जो है, मन बुद्धि, इनके जो सन्मुख है एक प्रकार से, क्या सन्मुख है? संसार। तो ये चीज हमारे लिए खतरे की। और यदि भगवान सम्मुख हो तो बेड़ा पार है। तो नेत्रों से हम भगवान के दर्शन करें, कानों से भगवान के प्रेम प्रभात की बातों को सुने, और मन से उस सुनी बात का मनन करें, और बुद्धि से निश्चय इतन भूत कि ये ठीक बात एकदम सच्ची है ऐसा निश्चय करें, और जो बात सुनी जाती है समझी जाती है उसी के अनुसार अपने जीवन को बढ़ावें। अपने जो हाथ है पैर है ये सब भगवान की प्राप्ति में लगा देवें तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। हाथों से थी तो हम लोगों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, उपकार करना चाहिए, उत्तम कर्म करने चाहिए, जप करना, दान देना, तप करना, पिताजी के हाथों से एक प्रकार से करें, हाथ इन काम में लगा दें। और कानों को भगवान के गुण प्रभाव रहस्य की बातों में लगा दें, भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय की बातों को सुनने में लगा दे कानों को, तो कान पवित्र होकर के हमारे को परमात्मा की प्राप्ति में पूरी मदद देवे, और नेत्रों से हम सर्वत्र भगवान को ही देखें, तो हमारे नेत्र हर वक्त खिले रहें और हमारी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। और कानों से ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया बात सुने, भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, और सुन सुन करके मुग्ध हुए, और मन से उस परमात्मा का ध्यान करें और बुद्धि से उसका सुनिश्चय करें, यही भगवान को सन्मुख करना है। भगवान को ही हम देखें, भगवान की बातें सुने, भगवान की बातें वाणी से कहें, भगवान का ही ध्यान करें, सारी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान में लगा दें, तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जैसे संसार की प्राप्ति हो रही है, इससे भी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अपने शरीर का जो बल है उसको भी भगवान के काम में लगा दें तो बेड़ा पार है। मन और बुद्धि के मां बल को बढ़ावें तो ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही सहायक है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल के मां रख के इससे समझो कि उत्तम काम लेवें तो ये हमारी आत्मा के कल्याण का बहुत सरल उपाय है। मन, बुद्धि, इंद्रियों का प्रयोग हम परमात्मा की तरफ करें, परमात्मा का ही भजन ध्यान करें, उसी काम में सब इंद्रिय मन को लगा देवे तो बहुत जल्दी काम हो जाओ। इन सब चीजों को इसके विपरीत लगावे तो पतन हो ही रहा है। हमारे शरीर का जो बल है उस शरीर के बल को हम समझो कि खूब कस करके ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें और अपना जीवन सदाचार में लगा देवे निष्काम भाव से, तो मुक्ति के देने वाला हो जाता है। उसी शरीर के बल को हम खोटे काम में लगावें, भोग में, पाप में लगावें या प्रमाद में लगावें तो वो हमारा बल नरक के देने वाला होता है। समझो हम अपने बल को एक तो साधन के मासो लगावें, साधन के काम में बल को लगावें, और एक दूसरे का अनिष्ट करने के काम में लगावें, तो दिन रात का बीच है। दूसरों का अनिष्ट करने से तो उसे उनको नरक की प्राप्ति होती है, और सत्काम के मां भजन ध्यान में मन को लगावें, बल को लगावें, तो उससे आत्मा कल्याण होता है। इसी प्रकार से जो हमारे में विवेक है, बुद्धि है, उसके विषय में ऐसा ही समझना चाहिए, उस विवेक और बुद्धि को दूसरे के अनिष्ट करने के लिए लगावें तो उसका फल नरक होता है, और उसको भगवान के भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, इन कामों के मां लगावें, भगवान के तत्व समझने में लगावें तो उससे हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से रुपयों की बात है, हम रुपयों के द्वारा पाप करें तो उससे नरक मिलता है, उसका फल नरक है, और उन्हीं रुपयों से हम समझो कि दुखियों की, अनाथों की, साधुओं की, महापुरुषों की सेवा करें, उनकी सेवा के काम में लगा दें और निष्काम भाव से लगा लें तो हमारी आत्मा का सुधार हो सके, शीघ्र उद्धार हो सकता है। तो ये मनुष्य अपने आत्मा का चाहे तो उद्धार कर सके और चाहे तो पतन कर सके। अपना मन, बुद्धि और इंद्रियां ये जीते हुए हैं तो हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक हैं, और ये नहीं जीते हुए तो हमारे पतन के बीच के वहां मदद करने वाले हैं, यानी पतन की हेतु हो जाते हैं। तो जो कुछ हमारे अधिकार के वहां है उसको परोपकार में लगाना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति के मां और ज्ञान वैराग्य के बीच, ज्ञान से थी शरीर में समझो कि भी आपने जागृति होती है, चेतनता होती है, उससे हर एक बात को हम समझ सकते हैं। वो परमात्मा शुद्ध हुई, तीक्ष्ण हुई, स्थिर हुई बुद्धि से समझा जाता है। तो हम लोगों को अपनी बुद्धि को जो है सूक्ष्म बनानी चाहिए, पवित्र बनानी चाहिए, तीक्ष्ण और सूक्ष्म और शुद्ध और स्थिर, तो वो हमारे लिए मुक्ति के देने वाली हो जाती है। और उस बुद्धि को हम संसारिक मिथ्या काम के बीच के मां रुपया कमाने में, पाप करने में लगा देते हैं, तो उसका फल हमारे को नरक होता है। क्योंकि रुपया कमाने में बहुत से पाप करने पड़ते हैं, पाप का फल नरक होता है। तो बुद्धि को कभी कुमार्ग में नहीं लगाना चाहिए। ये मन ही हमारा मित्र है, जीता हुआ जो मन है वो अपना मित्र है, और जो अपना मन कंट्रोल में नहीं है, नहीं जीता हुआ है, या इंद्रिया हमारी नहीं जीती हुई है, तो खतरे की चीज। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को शीघ्र तिशीघ्र बना लेना चाहिए। और ये मन बुद्धि इंद्रियां हमको मदद देने के लिए तैयार है, महात्मा लोग मदद देने के लिए तैयार है, ईश्वर उसको मदद देने के लिए तैयार है, शास्त्र मदद देने के लिए तैयार है। चारों तरफ से समझो कि हम लोगों को सहायता मिलने की बोछार एक एक से आ रही, और फिर भी हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे और बिना परम पद लाभ के यहां संसार से जावे, तो हमारे लिए दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है, भय की बात है। मनुष्य को अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए और उसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे लोभी आदमी के पास में कितना रुपया हो जाओ वो संतोष नहीं करता, हजार हो तो लाख इच्छा करता है, लाख हो तो पांच लाख की, पांच लाख हो तो दस लाख की, बीस लाख की, उसकी कोई ओड ही नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को तत्परता के साथ के बीच के मां अपना समय उच्च कोटि के वहां बिताना चाहिए, जो आगे जाकर के हम लोगों को घोर पश्चाताप करना न पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पछिताय। रही करम ईश्वर की विचा दो सर गाय सियावर। जो इस समय के मां नहीं चेतेगा उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर्फ धुन धुन करके पश्चाताप करना पड़ेगा, और वह पुरुष काल कर्म और ईश्वर के माथे पर झूठा दोष है सो लगावे। काल के ऊपर ये दोष लगाना कि कलयुग आ गया इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, और कर्म पर अपने तकदीर पर यह दोष लगाना कि हमारे तकदीर में ये बात लिखी हुई, और ईश्वर के ऊपर दोष लगाना कि हे ईश्वर तने ऐसा क्या जुलम कर दिया। और दोष सारा इसका खुद का है। इस प्रकार से समझ करके कि और समय का जो उपयोग है वो उच्च से उच्च होना चाहिए। जब ईश्वर ने हमारे को विवेक दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो ये सब क्या काम आएंगे। थे हम सावधानी के साथ अपना समय बितावें तो अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार बहुत शीघ्र हो सकता है। माता मां भाई लोग एकांत के वहां बैठ करके जो अपना जप ध्यान करते हैं, सत्संग स्वाध्याय करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जब सुधार किया जावे तो बहुत थोड़े समय के मां समझो अंतकरण शुद्ध होकर के परमात्मा में प्राप्त हो सकती। और जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं इसमें तो वर्षों के वर्ष लग जाते हैं और फिर भी संदेह है कि कल्याण होगा या नहीं। आप जब एकांत के बीच के मां जब ध्यान पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय में तो वो समय उस आपने नियत है धर्म में कृत के लिए अपने समझो कि नित साधन कहो नित नियम कहो उसकी